छोटे साहब छोटे साहब।
क्या बात है बाबा?
वो छोटे साहब, मैंने आपके जूते पॉलिश कर दिए हैं, आए मैं आपको पहना दूं।
अच्छा बाबा, आप ऐसा करें कि मेरी किताबें समेट कर बैग में रख दें और मुझे एक गिलास पानी भी पिला दें। आ रहा हूँ भाई, इतनी भी क्या जल्दी है?
छोटे साहब जरा जल्दी करें, देर हो जाएगी।
जल्दी ही तो कर रहा हूँ।
आसिफ एक बहुत ही अमीर घराने का लड़का था। उसके अब्बू शहर के बहुत बड़े सनतकार थे। आसिफ के बचपन में ही उसकी वालदा का इंतकाल हो गया था। उसके काम काज के लिए उसके वालिद ने एक बाबा जी को मुलाजिम रख लिया था। वो आसिफ के तमाम काम सरंजाम देते थे, हत्ता कि अगर आसिफ को पानी भी पीना होता तो वो भी बाबा जी ही लाकर देते। एक दिन बाबा जी बीमार हो गए तो आसिफ काहिली की वजह से स्कूल भी न गया। दूसरे दिन जब आसिफ स्कूल गया तो मास्टर साहब ने पूछा,
आसिफ बेटा कल आप स्कूल क्यों नहीं आए थे?
वो मास्टर साहब, कल हमारे बाबा जी काम पर नहीं आए थे।
बाबा जी काम पर नहीं आए थे, क्या मतलब?
मास्टर साहब, किसी ने मुझे तैयार ही नहीं किया, ना मेरी किताबें बस्ते में रखी, फिर मैं स्कूल कैसे आता?
आसिफ तुम कोई छोटे बच्चे तो नहीं हो, तुम्हारी उम्र के बच्चे तो सुबह से शाम तक मेहनत करके घर के खर्चा चलाते हैं, और ये जो काम तुम गिनवा रहे हो ये तो बहुत ही मामूली काम है। ये काम तो तुम खुद भी कर सकते हो।
मैं भला नौकरों वाले काम क्यों करूं?
मास्टर साहब ने आसिफ की बात सुन ली। उस वक्त तो मास्टर साहब खामोश रहे, लेकिन छुट्टी के वक्त उन्होंने घर जाते हुए आसिफ को आवाज दी।
आसिफ, आसिफ बेटा इधर आओ।
जी जी मास्टर साहब।
आसिफ बेटा, आज मैंने जो कुछ सुना मुझे इससे बहुत अफसोस हुआ है। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना कहूँगा कि घर जाकर ये किताब जरूर पढ़ लेना। ये लो किताब।
ठीक है मास्टर साहब, मैं ये किताब जरूर पढ़ूंगा।
शाम को आसिफ अपने स्कूल के काम से फारिग होकर मास्टर साहिब की दी हुई किताब पढ़ने में मशगूल हो गया। जूं जूं आसिफ किताब पढ़ रहा था वो तब्दील होता जा रहा था, और जब किताब खत्म हुई तो आसिफ बिल्कुल तब्दील हो चुका था। सुबह के वक्त जब बाबा जी आसिफ के कमरे में आए तो आसिफ को देखकर हैरान रह गए।
अरे ये तुम्हें यूनिफॉर्म किसने पहनाया?
बाबा ये मैंने खुद पहना है और इस्त्री भी खुद की है।
क्या वाकई? भाई तुमने तो कमाल कर दिया। अच्छा चलो मैं नाश्ता करवा दूँ।
बाबा मैं नाश्ता भी कर चुका हूँ और आज के बाद मैं अपना काम खुद ही किया करूँगा।
वाह भाई वाह, तुम तो बहुत अच्छे हो।
अच्छा बाबा, अब मैं स्कूल चलता हूँ।
ये कहकर आसिफ गाड़ी में बैठकर स्कूल चला गया। स्कूल पहुंचते ही आसिफ सीधा मास्टर साहिब के पास पहुंचा और उनका शुक्रिया अदा करके वादा किया कि आइंदा वो अपना काम खुद किया करेगा।
आसिफ बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मुझे तुम्हारी बातें सुनकर इतनी खुशी हुई है कि मैं ऐसे बयान नहीं कर सकता।
आसिफ ने ये बात मास्टर साहिब के सामने कह तो दी, मगर उसके साथ खड़े अंजुम को ये बात बहुत अजीब लगी। अंजुम भी आसिफ की तरह एक काहिल किस्म का लड़का था। चुनाचे जो ही ब्रेक हुआ तो अंजुम फौरन आसिफ के पास आया।
आसिफ तुम मास्टर साहब से क्या कह रहे थे कि अपना काम खुद करोगे?
हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो?
अरे भाई, अगर हम अपना काम खुद करने लगे तो फिर इन नौकरों के रखने का क्या फायदा?
नहीं अंजुम, अच्छे लोग वही होते हैं जो अपने काम अपने हाथों से सर अंजाम दें। और हमारी क्या हैसियत, अच्छे लोग तो बादशाह होने के बावजूद भी अपने काम अपने हाथों से करते रहे हैं।
क्या बादशाह भी अपने काम खुद करते थे?
हाँ अंजुम, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मैं तुम्हें चंद सच्चे वाकयात सुनाता हूँ जो मैंने मास्टर साहब की दी हुई किताब में पढ़े थे।
हाँ हाँ आसिफ जरूर सुनाओ।
अच्छा तो फिर सुनो। दिल्ली जो हिंदुस्तान का एक शहर है, उसमें एक मुसलमान बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहा करता था। बादशाहत के साथ साथ वो खुशपति भी किया करता था और उससे जो पैसे मिलते उन्हीं में अपनी गुजर औकात करता था। उसकी बीवी भी अपने घर का काम काज खुद ही किया करती थी। एक मर्तबा खाना पकाने के दौरान उसका हाथ जल गया तो उसने बादशाह से मुलाजमा रखने के लिए कहा।
तो फिर क्या बादशाह ने उन्हें मुलाजमा रखवा दी?
नहीं भाई, बादशाह ने कहा कि बज़ाहिर तो मैं बादशाह हूँ लेकिन हकीकत में गरीब आदमी हूँ, चंद रुपए मेरी मजदूरी है, भला इतने पैसों में मुलाजमत कैसे रखी जा सकती है।
तो मलका ने बादशाह से कुछ ना कहा?
नहीं, मलका एक अच्छी और समझदार खातून थी इसलिए उसने खामोशी अख्तियार की और आइंदा कभी भी मुलाजमा रखने की बात नहीं दोहराई।
वाह, हैरत अंगेज, ये लोग तो वाकई हैरत अंगेज लोग थे।
अच्छा, अब एक दूसरा वाकया सुनो। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जब मदाइन के गवर्नर बने तो उन्हें जो भी तनख्वाह मिलती उसे गरीबों में तकसीम कर देते थे और खुद चटाइयां बुनकर रोजी कमाते और गुजर बसर करते थे। एक मर्तबा एक शख्स जब उन्हें मिलने आया तो हजरत सलमान रजी अल्लाह तआला अन्हु आटा गूंथ रहे थे तो उस शख्स ने बड़ी हैरानगी से पूछा कि आपका मुलाजिम कहाँ है। हजरत सलमान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, उसे मैंने किसी और काम से भेजा है और अब उसके हिस्से का काम मैं कर रहा हूँ ताकि उसे दो काम न करने पड़े।
अरे तुम खामोश क्यों हो गए? और वाकयात सुनाओ ना।
अभी तो तफरी का वक्त खत्म हो चुका है, कल की तफरी में फिर बकिया वाकयात सुनाऊंगा।
हरगिज नहीं, मैं बकिया वाकयात तुम्हारे घर आकर आज ही तुमसे सुनूंगा।
ठीक है भाई, शौक से आना, फिलहाल तो चलो क्लास की जानिब।
ये कहकर दोनों क्लासरूम की जानिब चल दिए। छुट्टी के बाद अंजुम जो ही घर पहुंचा, खाने के फौरन बाद अपने अब्बू से इजाजत लेकर आसिफ के घर जा पहुंचा।
कौन है?
आसिफ, मैं हूं अंजुम।
मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, चलो मेरे कमरे में चलते हैं, वहीं तुम्हें वाकयात भी सुनाऊंगा।
जो ही वो दोनों कमरे में दाखिल हुए, आसिफ ने अंजुम की बेचैनी देखते हुए किस्से सुनाना शुरू किए।
भाई, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तो तुम जानते ही होगे।
जी हाँ, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत प्यारे साथी थे।
बिल्कुल ठीक, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खिलाफत से पहले अपने कामकाज के साथ साथ अपने मोहल्ले की एक बेवा औरत की बकरियों का दूध भी दोहते थे। जब आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खिलाफत मिली तो उस औरत की बेटी ने अपनी माँ से कहा कि अब हमारी बकरियों का दूध कौन धोकर देगा। जब ये बात हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक पहुँची तो उन्होंने फरमाया कि मेरी खिलाफत मुझे लोगों के काम करने से नहीं रोक सकती, अब तो मैं और भी ज्यादा लोगों के काम काज किया करूँगा। चुनाचे इसी तरह उन्होंने सारी जिंदगी अपने काम भी खुद किए और दूसरों के काम भी करते रहे।
आसिफ और अंजुम अपनी बातों में इतने मगन थे कि उन्हें आसिफ के मामू के आने की खबर ही न हुई। यूं ही उनकी बात खत्म हुई तो उनके मामू बोले,
अस्सलाम वालेकुम बच्चों।
वालेकुम सलाम। अरे मामू, आप कब आए?
बस थोड़ी ही देर हुई है, मगर तुम दोनों को मसरूफ देखकर खामोश रहा। तुम दोनों तो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे।
अच्छा मामू जान, पहले तो आप तशरीफ रखें और फिर बताएं कि क्या आपको भी कोई ऐसा वाकया याद है।
हाँ भाई, मुझे तो ऐसे कई वाकयात याद हैं और आज मैं तुम्हें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का वाकया सुनाऊंगा। दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत के भेजे हुए रसूलों में से एक रसूल हैं, जिन पर जबूर जो कि आसमानी किताब है नाजिल हुई थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको बहुत से मौजज़ात दिए थे, जिनमें से एक मौजज़ा ये था कि आप अलैहिस्सलाम के हाथ में लोहा खुद ब खुद नर्म हो जाता था और आप अलैहिस्सलाम जिस तरह चाहते मोड़ लेते। चुनाचे नए बड़े पैगंबर होने के बावजूद आप अलैहिस्सलाम अपने हाथ से काम करते और जिरहें बनाते थे। रोजाना एक जिरह बनाते जो महंगे दामों बिक जाती। इस कमाई से खुद भी गुजारा करते और गरीबों की भी मदद करते थे। अच्छा बच्चों, अब एक बात बताओ।
वो क्या मामू जान?
ये बताओ कि इन किस्सों से हमें क्या सबक मिलता है?
यही कि हर शख्स को अपना काम अपने हाथ से करना चाहिए
और ये भी पता चला कि अपने हाथ से काम करने वालों को अल्लाह ताला पसंद करते हैं।
अच्छा, अब ये बताओ कि तुम दोनों भी अपने काम अपने हाथों से करते हो?
मामू की बात सुनकर दोनों के सर शर्मिंदगी से झुक गए। कुछ देर बाद आसिफ हिम्मत करके बोला,
मामू जान पहले तो अपने काम खुद नहीं करते थे लेकिन अब जरूर किया करेंगे।
क्यों अंजुम, आपके क्या ख्यालात हैं?
जी हाँ मामू, आज के बाद मैं अपने काम अपने ही हाथ से किया करूँगा और दूसरों के जो काम हो सके वो भी किया करूँगा।
शाबाश बेटा, अच्छे लोग वही होते हैं जो अच्छी बात सुनकर फौरन इस पर अमल करते हैं और दूसरों को भी इसकी तलकीन करते हैं।